पृष्ठ संख्या 39, अध्याय 3, दिल्ली, 18वीं शताब्दी में। यह आश्चर्य की बात है कि उर्दू दिल्ली प्रदेश के निकट ही पैदा हुई, परंतु वहाँ वह बहुत दिनों तक साहित्य के फलों फूलों से वंचित रही। इसके विपरीत दक्षिण में, जहाँ वह एक अतिथि के रूप में गई थी, खूब फली फूली। इसके कुछ कारण पिछले अध्याय में बताए जा चुके हैं और इस संक्षिप्त पुस्तक में अधिक विस्तार से बताना असंभव है। इसलिए हमको यह याद रखना चाहिए कि उत्तर भारत में पैदा होने वाली उर्दू भाषा एक बोलचाल की भाषा के रूप में उन्नति कर रही थी, परंतु सांस्कृतिक क्षेत्रों में फारसी इस प्रकार छाई हुई थी कि लोग बोलचाल की भाषा को काव्य में लाने से सकुचाते थे। सामंतशाही और साम्राज्यवाद की विशेषता यह होती है कि उच्च वर्ग जिस भाषा को सभ्य ठहरा देता है, उसके सम्मुख दूसरी भाषाएं तुच्छ और साधारण मालूम होने लगती हैं। इसीलिए बहुत दिनों तक यही रीति चलती रही कि बोलचाल की भाषा कुछ और थी और कविता की कुछ और। नहीं तो यह बात स्पष्ट है कि जब कला कौशल अन्य क्षेत्रों में मेलजोल के कारण नई शैलियां जन्म ले रही थी, उस समय विचारों को वाणी देने की क्षमता रखने वाली भाषा अपने सर्वव्यापी स्वभाव के बावजूद कैसे यूं ही रह सकती थी। यदि हम आगे की स्थिति को दृष्टि में रखकर केवल मुगलों ही के युग की सामाजिक अवस्था को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अनेक कारणवश फारसी ही से काम लेना उस समय संभव था। एक शक्ति संपन्न राज स्थिति के बदल जाने के कारण जिस प्रकार दुर्बल हो जा रहा था, उसी प्रकार फारसी भी अपना प्रभाव कम करती जा रही थी। यह विचित्र प्रकार की व्यवस्था थी कि जिन लोगों की मातृभाषा हिंदुस्तानी थी, वह फारसी ही में लिखने पढ़ने को सभ्यता का चिन्ह समझते थे। बात यह है कि कला और विद्या दोनों का संबंध जिस श्रेणी के लोगों से था, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं फारसी की छत्रछाया में विकसित हुई थी। परंतु देश की भाषा उर्दू के रूप में जनता और मध्यम श्रेणी के लोगों में परवरिश पा रही थी। जहाँ भाषा मौजूद हो, वहाँ उसके साहित्य के पैदा होने में देर नहीं लगती, बस एक सूक्ष्म आधार और संकेत की आवश्यकता होती है। वली के आने ने यह शर्त पूरी कर दी और कवियों के मन से यह भय दूर हो गया कि बोलचाल की भाषा में कोमल भावनाओं का चित्रण नहीं हो सकता। उर्दू के कुछ विद्वानों का विचार है कि उत्तरी भारत में उर्दू के विकास का उल्लेख करते हुए हमें जायसी, कुतबन, कबीर, मीरा और तुलसीदास की कृतियों के कुछ पृष्ठ संख्या 40 अंशों को उर्दू का ही प्रारंभिक रूप समझना चाहिए, क्योंकि उस समय तक भाषाएं अपने परिवर्तन युग में थीं और उर्दू भी अवधी, ब्रज या पूर्वी से उतनी ही निकट या दूर थी जितनी खड़ी बोली पर आधारित हिंदी। परंतु यह संक्षिप्त इतिहास में इस वाद विवाद को छेड़ना इसलिए आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त कवियों के बारे में किसे जानकारी प्राप्त करना होगा। वह हिंदी साहित्य के इतिहास में उनके जीवन एवं कृतित्व का अध्ययन कर सकता है। उर्दू साहित्य के वृहद इतिहास में इनका उल्लेख किया जा सकता है। इस स्थान पर केवल उन्हीं लेखकों और कवियों का वर्णन करना उपयुक्त होगा जिनकी जानकारी उर्दू साहित्य के उत्थान एवं विकास को समझने के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उर्दू कवियों के नाम 17वीं शताब्दी के अंतिम काल से निरंतर मिलने लगते हैं। उनमें से अनेक बहुत रखते हैं। अफजल पानीपति ने बारहमासी की परंपरा में एक बड़ी सुंदर भावपूर्ण मसनवी विकट कहानी के नाम से लिखी, जो प्रकाशित हो चुकी है। यह मसनवी 1625 ईस्वी से पहले की रचना है और दिल्ली के आसपास की भाषा का बहुत अच्छा नमूना कही जा सकती है। भाषा के दृष्टि से उदाहरण देखिए। मेरा सुख देख उसको हैरत आई, निहादा बर अलम रागे जुदाई, बिकट किस्सा निपट मुश्किल कहानी, दीवानी की सुनो सखियन कहानी, मिलन पाछे बिछड़ना यू कठिन है, कहो अब जिंदगी की क्या जतन है। अफजल के अतिरिक्त जाफर जटल्ली और अटल के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। हास्य प्रधान और कहीं कहीं अश्लील होने पर भी जटल्ली के काव्य संग्रह से उस समय के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के संबंध में बड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी काल की एक अन्य रचना आशुरनामा है, जो उत्तर भारत की प्रथम लंबी मसनवी कही जा सकती है। इसकी रचना 1688 ईस्वी में हुई। इसका लेखक रोशन अली सहारनपुरी है। उक्त मसनवी भी करबला की महान घटना का वृतांत है। साहित्यिक दृष्टि से कमजोर, परंतु भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी काल के उर्दू मर्सियों की एक डायरी पांडुलिपि के रूप में प्रोफेसर मसूर हसन रिजवी लखनऊ के व्यक्तिगत संग्रह में इन मर्सियों को प्रोफेसर रिजवी उर्दू के बजाय रेखता कहना उचित समझते हैं। कहा जा चुका है कि वली के प्रभाव से उत्तरी भारत में उर्दू कविता के लिए एक नया वातावरण बन गया। यहाँ तक कि 1720 ईस्वी के लगभग दिल्ली के वह कभी कभी अपने विचार उर्दू में प्रस्तुत करने लगे, जो केवल फारसी में ही रचना करते थे। फितरत, उम्मीद, बेदिल, नदीम और आरजू, जो सबके सब फारसी के विद्वान और कवि थे। पृष्ठ संख्या 41। कभी कभी अपने शिष्यों के अनुरोध पर एक आध सब शेर उर्दू में भी कह लिया करते थे। इनमें आरजू सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके संरक्षण में कई उर्दू कवियों ने उत्तर भारत में उर्दू काव्य की नींव रखी। उस समय तक कुछ कवि जो कविता लिखते थे, उनमें भी एक पंक्ति उर्दू की होती तो एक फारसी की, और कभी कभी एक ही पंक्ति का आधा भाग फारसी का होता और आधा उर्दू का। कभी कभी तो विचार तक फारसी के होते, परंतु 18वीं शताब्दी के आरंभ ही से हमको उर्दू काव्य के साफ सुथरे उदाहरण मिलने लगते हैं। राजकाज की भाषा फारसी रही, किंतु कवियों ने जनता की बोली से काम लिया। उच्च वर्ग में फारसी का जादू चलता रहा और जनसाधारण में हिंदुस्तानी जड़ पकड़ती रही। दिल्ली के वांग्मय में जो परिवर्तन हुआ, उसे हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं कि पहले फारसी के कवियों ने एक आध शेर उर्दू में लिखे, फिर धीरे धीरे ऐसे कवि पैदा हुए जिन्होंने काव्य रचना फारसी में प्रारंभ की, परंतु थोड़े ही दिनों बाद फारसी छोड़कर उर्दू में लिखने लगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी शिक्षा फारसी में हुई थी। फारसी काव्य उनकी आत्मा में बसी हुई थी। अधिकांशतः फारसी ही के उदाहरण उनके सामने थे और फारसी ही के आलोचकों के बताए हुए मार्ग पर चल भी सकते थे। अतः उन्होंने अपनी काव्य रचना के लिए जो रूप चुने, वह फारसी में ही अधिक प्रचलित थे। मगर इन बातों के ऐतिहासिक और सामाजिक कारण इतने स्पष्ट हैं कि उनका वर्णन व्यर्थ होगा। परंतु यह बात याद रखने योग्य है कि उनके विचारों में किसी प्रकार की धार्मिक संकीर्णता ना थी। यदि वह कभी ऐसे शब्द का प्रयोग करते थे, तो उसका दूसरा भाव भी होता था। यदि वह कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते भी थे, तो उसका दूसरा भाव ही होता था। उर्दू साहित्य के आलोचकों ने उत्तर भारत में काव्य साहित्य का पहला युग मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के राज्यकाल से आरंभ किया है, जो 1719 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। वह पहला मुगल बादशाह था जिसकी उर्दू कविता मिलती है, परंतु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कितना कहा। दुनिया बहुत बदल चुकी थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां के दरबार में अबुल फजल, फैजी उर्फी नजीरी, साहेब, कुदसी और कलीम शोभायमान होते थे, और अब उर्दू कवियों की बारी थी, जिनमें से कुछ राज दरबार से संबंध रखते थे और कुछ उसके बाहर से। आरंभ में तो उर्दू काव्य का दिल्ली के राज दरबार से कोई गहरा संबंध ना था, परंतु इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वह सामंतवादी काल के पतन का युग था, और कुछ ना होने पर भी साहित्य और कला का नेतृत्व एवं प्रोत्साहन भी बादशाह और उसके अमीरों के हाथ में था। मुहम्मद शाह के राज्यकाल में जो दो सबसे बड़ी घटनाएं हुई, उनमें एक तो नादिर शाह का आक्रमण था और दूसरे उर्दू काव्य का पांव दिल्ली में जम जाना। इन दोनों घटनाओं से मुगल राज की अवनति का पता चलता है। अगर राज्य प्रबल होता, पृष्ठ संख्या 42, तो ना नादिर दिल्ली को लूटता और न जनता की भाषा मुख्य भाषा का स्वरूप धारण करती। फाइज, आबरू, नाजी, हातिम, यकरंग, मजहर जाने जा, मजमून, फुगा, तांबा तथा और बहुत से दूसरे कवि इस युग के कवि कहे जाते हैं। उर्दू साहित्य के इतिहास में इनका स्थान बड़ा ऊंचा है। इनकी भाषा सरल हिंदुस्तानी थी। ये लोग फारसी के विद्वान होने के कारण उससे निश्चित रूप से प्रेरित होते थे, परंतु उनकी भावनाओं विचारों में भारतीयता भरी हुई है। जिस उर्दू का प्रयोग यहाँ की कविता में होता था उसे उस समय रेखना कहते थे। रेखता का अर्थ है मिला जुला, गिरा पड़ा, पक्की गज की तरह पुष्ट। इस शब्द से पता चलता है कि यह एक मिलीजुली भाषा थी जिसका प्रयोग काव्य में किया जा रहा था। जिन कवियों के नामों का ऊपर उल्लेख किया गया उनमें से कई के बारे में हमारी जानकारी अभी बहुत कम है। उस जमाने के कवियों के जो हाल लिखे जा रहे थे और जिनको तज़किरा कहा जाता था, उनमें कवियों की जीवनी विस्तार में ना लिखकर एक साधारण परिचय देने को ही पर्याप्त समझा जाता था। इसलिए बहुत से तज़किरे देखने के बाद भी पूरा जीवन चरित्र सामने नहीं आता। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे संबंधित सूचनाएं विद्वानों के परस्पर शोध करने पर सामने आ गई हैं और उनकी कृतियां भी प्राप्त हो चुकी हैं, परंतु अभी बहुत कुछ काम होने को बाकी हैं। संक्षिप्त रूप में यहाँ उनका वर्णन किया जाएगा और उनके एक आध शेर उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उस समय दिल्ली में उर्दू काव्य का क्या रूप था। शाह मुबारक आबरू का नाम नजमुद्दीन था और उपनाम आबरू। वह ग्वालियर के एक प्रसिद्ध सूफी वंश से संबंधित थे। वह आरजू के शिष्य थे। उनकी मृत्यु सन 1734 ईस्वी के लगभग हुई। उन्होंने अपनी कविताओं का संग्रह इकट्ठा कर लिया था, परंतु अभी कुछ दिन पहले तक उनकी रचनाओं का कुछ ही अंश मिलता था। अब उनके दीवान की कई प्रतियां मिल गई हैं और संग्रह भी प्रकाशित हो गया है। उसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि अधिकतर गजलें ही लिखते थे। वैसे उन्होंने एक मसनवी भी लिखी थी जिसमें श्रृंगार रस के नख शिख का वर्णन की रीति पर प्रेमिका की सुंदरता, छवि और पहनावे का वर्णन किया जाता था। उनको अलंकारों के प्रयोग का बहुत शौक था, इसलिए कभी-कभी उनकी कविता नीरस भी लगती है, मगर दिल्ली की बोलचाल का मजा उनके शेरों में मिल जाता है। जैसे फिरे थे दस्त दस्त दीवाने, किधर गए वो आशिकी के हाय जवाने, किधर गए अफसोस है कि मुझको वो यार भूल जावे, वो शौक वो मुहब्बत वो प्यार भूल जावे। पृष्ठ 43। कौल आबरू का था कि न जाऊंगा उस गली, होकर के वे करार देखा आज फिर गया। उठ चेत क्यों जुनू सती, खातिर निचंत की आई बहार, मुझको खबर है वसंत की। नाजी का नाम सैयद मोहम्मद शाकिर था। वह नवाब अमीर खां के यहाँ सिपाहियों में थे। उनके स्वभाव का झुकाव हास्य और विनोद की ओर बहुत था और कहा जाता है कि हर समय हंसने वाली बातें किया करते थे, जिससे रोते हुए व्यक्ति भी हंस पड़ते थे, लेकिन वह स्वयं ना हंसते थे। उनका 1754 ईस्वी में लगभग युवावस्था में देहांत हो गया। उन्होंने नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली की तबाही का दृश्य अपनी आँखों से देखा था और उस दृश्य को एक बहुत ही शोकपूर्ण कविता के रूप में प्रस्तुत किया था। उनका काव्य संग्रह अब नहीं मिलता और ना यह पूरी तरह ऐतिहासिक कविता ही प्राप्य है। उनकी काव्य शैली भी वही है जो उस समय प्रचलित थी, अर्थात वह भी अलंकारों का प्रयोग करते थे और अधिकतर गजल ही के रूप में अपने विचार प्रस्तुत करते थे। कुछ शेर यहाँ हैं। आज तो नाजी सजन से कर तू अपना अर्जे हाल, मरने जीने का ना कर बसवास, होनी है सो हो। नमकी हुस्न देख कर पी का रंग गुल का मुझे लगा फीका, किया फरदा कवादा सर्वकद ने, कयामत का जो दिन सुनते थे कब है। इस युग के प्रसिद्ध कवियों में हातिम को अत्यंत महत्व प्राप्त है, क्योंकि वह केवल एक बड़े कवि ही न थे, कई बड़े कवियों के काव्य गुरु भी थे। एक लंबी आयु पाने के कारण उन्होंने भाषा के अनेक परिवर्तनों का अध्ययन भी किया था और अपनी काव्य रचना में भाषा के बदलते हुए रूपों को जगह दी थी। हातिम का नाम शेख जहूरुद्दीन था। वह दिल्ली में 1699 ईस्वी में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी किशोरावस्था ही में कविता की देवी के चरणों में अपना सिर झुका दिया था। उस समय दिल्ली में वली का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। हातिम ने भी सफलतापूर्वक उसका अनुकरण किया। उन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह तैयार कर लिया था, जिसमें पुराने ढंग की कविता की सभी विशेषताएं पाई जाती थी। लेकिन जब रंग बदला तो उन्होंने पुराना ढंग छोड़कर उस भाषा में काव्य रचना आरंभ की जो अधिक प्रभावपूर्ण एवं युक्त संगत थी। कुछ अपने पुराने संग्रह से लेकर और कुछ नई रचनाओं को उन्होंने एक दूसरा संग्रह तैयार किया, जिसका नाम दीवान ज्यादा रखा। पृष्ठ संख्या 44। इस संग्रह की विशेषता यह है कि इसके आरंभ में उन्होंने एक भूमिका लिखी है, जिसमें अपनी भाषा एवं काव्य के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। आलोचक की दृष्टि से यह भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समय की बदलती हुई रुचि और परिस्थितियों का आभास मिलता है। उनकी मृत्यु 1781 ईस्वी या 1792 ईस्वी में हुई। हातिम की कविता के अध्ययन से थोड़ा बहुत उनके जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। साधारणतः उनके यहाँ भी उस युग के दूसरे कवियों की भांति अधिकतर प्रेम और तसव्वुफ के विषय मिलते हैं। अपने संग्रह के अंत में उन्होंने अपने शिष्यों के नाम भी गिनाए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मिर्जा मुहम्मद रफ़ी सौदा का है, जिनका वर्णन आगामी पृष्ठों में किया जाएगा। हातिम ने फारसी में भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन वह आज एक उर्दू के कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनके संबंध में बहुत कुछ अनुसंधान हो चुका है, किंतु उनका संग्रह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए यह शेर देखिए, जिसको देखा सो यहाँ दुश्मने जा है अपना, दिल को जाने थे हम अपना सो कहाँ है अपना, खुप गई है दिल में हातिम के तेरी बाकी निगाह, चलते चलते टुक बताता जा मेरा क्या नाम है। जिंदगी दर्दे सर हुई हातिम कब मिलेगा मुझे पिया मेरा, पीरी में हातिम अब न जवानी की याद कर, सूखे दरख्त भी कहीं होते हैं फिर हरे। मिर्जा मजहर जाने जाने उर्दू में बहुत कम कविताएं लिखी, परंतु एक बहुत बड़े सूफी और विद्वान होने के कारण उन्हें बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। उन्होंने उर्दू में जो कुछ लिखा उसका कुछ अंश मात्र ही विभिन्न तज़किरों में पाया जाता है। उन्होंने भाषा को शुद्ध करने और कविता को उन अलंकारों से बचाने की चेष्टा की जो कविता को केवल शब्दों का एक गोरख धंधा बना देते थे। फारसी के विद्वान होने के कारण उनकी भाषा में फारसी शब्दों का प्रयोग बहुत मिलता है। 1791 ईस्वी के लगभग 80 वर्ष की अवस्था में किसी विरोधी द्वारा उनकी हत्या करने से मृत्यु हो गई। उर्दू के उस समय के प्रसिद्ध कवियों में कई उनके शिष्य थे, जिनमें यकीन सुप्रसिद्ध हैं। उनके कुछ शेर यह हैं, चली अब गुल के हाथों से लुटा कर कारवां अपना, न छोड़ा हाय बुलबुल ने चमन में कुछ निशान अपना, हसरत रह गई क्या क्या मजे से जिंदगी करते, अगर होता चमन अपना गुल अपना बागवां अपना। पृष्ठ संख्या 45। हम गिरफ्तारों को अब क्या काम है गुलशन से लेक, जी निकल जाता है जब सुनते हैं आती है बहार। इस युग के अनेक प्रमुख कवियों में मजमून फुगा यक रंग विशेष हैं, परंतु इस संक्षिप्त इतिहास में केवल उनके नाम ही दिए जा सकते हैं। अभी थोड़े ही समय पूर्व उत्तर भारत के एक अन्य आदि कवि के बारे में कुछ पता चला है। उनका उपनाम फाइज और नाम सदरुद्दीन मुहम्मद था। वह दिल्ली के रहने वाले थे और दिल्ली के राज दरबार में उनको एक उच्च स्थान प्राप्त था। धन संपत्ति के अधिकारी होने के साथ साथ वह बड़े विद्वान भी थे और फारसी में उनकी बहुत सी पुस्तकें मिलती हैं। प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी ने उनका उर्दू काव्य संग्रह अपनी बहुमूल्य भूमिका और शोधपूर्ण टिप्पणियों के साथ प्रकाशित कर दिया है। उनका विचार है कि फाइज उत्तर भारत के पहले उर्दू कवि हैं जिन्होंने अपना संग्रह तैयार किया है। इस संग्रह के अध्ययन से केवल उस समय की कविता और विचारों के बारे में ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि उस समय की ऐतिहासिक समस्याओं और घटनाओं का हाल भी मालूम होता है। उन्होंने हर प्रकार की कविताएं लिखी हैं जिनमें सुंदरता और मनोभावनाओं का गहरा अध्ययन है, दोनों बातें पाई जाती हैं। फाइज के काव्य में स्थानीय रंग बहुत गहरा है। वह हिंदू धर्म के विशेष त्योहारों और महात्माओं का वर्णन भी बड़े मनोरंजक ढंग से करते हैं। उनकी उपमाओं और अलंकारों में भी हिंदी काव्य का रंग झलकता है। उस समय के मेलों और त्योहारों का वर्णन उनके यहाँ बहुत सुंदर ढंग से आया है। सारांश यह है कि फाइज की कविता से उस समय के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का एक सुंदर चित्र आंखों के सामने खिंच जाता है। दिल्ली के स्थान का उल्लेख करते हुए कहते हैं, है इंदर की मानो सभा जलवागर, की हर नार दिसती है रंभा सुवर, कमर पर जो पड़ दे है समूह सर, उन्हीं बोच मिल जाता मुए कमर, ले जाती हैं जो अप्सरा जी कुछल, कि देख उनको पानी में दिल जाए जल, हर एक नार सूरज की शोभा धरे, खड़ी हो सूरज की तपस्या करे। एक गजल के कुछ शेर देखिए, गाली तेरी मुझ दिल को प्यारी लगे, दुआ तेरी मुझ मन में भारी लगे। पृष्ठ संख्या 46, नहीं तुझसा और शोक ए मन हरण, तेरी बात दिल को न्यारी लगे, भंवर तेरी शमशीर जुल्फा कमन, पलक तेरी जैसे कटारी लगे।